नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में छठे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राशि का हस्तांतरण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सातवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 में स्थानीय निकायों को अनुदान देने के छठे राज्य वित्त आयोग की पूर्व स्वीकृत अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि यदि अनुदान राशि का हस्तांतरण नहीं होता तो ग्रामीण और शहरी निकायों की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। इस स्थिति से बचने के लिए 2021-25 तक लागू व्यवस्था के अनुरूप ही राशि का हस्तांतरण और योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा। कैबिनेट बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में वाइल्ड राइस उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई, और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ईएसई एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गया जी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है।
नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो एयरलाइंस से गया जी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली के संगत प्रावधान के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने तथा वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 12 महीने के लिए अधिकतम 10 करोड़ 40 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 के अंतर्गत अब रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पथ परिवहन विभाग और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें भी इस हेल्पलाइन पर दी जा सकेंगी। राज्य तकनीकी सेवाएं और संचार के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे।
डायल 112 पूर्ण तरह से निःशुल्क सर्विस है और अभी इसमें हम लोग और भी काफी सारे डेवलपमेंट्स करेंगे। जितने पार्क्स वगैरह हमारे जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे हम लोग पैनिक बटन्स लगाएंगे जिससे कि 112 की सेवाएं तुरंत उससे इंटीग्रेट हो जाए। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है बिहार में भी अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो कार से ऑटोमेटिकली 112 को सीधा सूचना चली जाए।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,347 लाभार्थियों का चयन किया गया है। उद्योग सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने योजना के अंतर्गत आवेदकों का औपबंधिक चयन किया। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद 3 किस्तों में लगभग 910 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 10 लाख रूपये दिए जाते हैं। इसमें 50% राशि अनुदान और 50% राशि बिना ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले के महसी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को मामले की अगली सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ दिलीप कुमार केसरी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। प्रोफेसर केसरी बिना कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। यह बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाह फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पटना, गया और कटिहार समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान रोहतास का डेहरी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 41.5, छपरा का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए भोजपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 23 जून तक जारी रहेगा। प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से मधुबनी जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर बलिराजगढ़ के व्यापक उत्खनन के लिए 10 वर्ष की परियोजना शुरू करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर श्री झा ने दरभंगा स्थित मिथिला शोध संस्थान को ज्ञान भारतम मिशन में शामिल करने का भी आग्रह किया। रेलवे ने वाराणसी मंडल को गोरखपुर कैंट, पनियहवा रेलखंड के उनौला पिपराई स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य को लेकर 8 जून तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। इसके चलते नरकटियागंज गोरखपुर कैंट खंड की कई सवारी रेलगाड़ियां पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं लालकुआं कोलकाता स्पेशल ट्रेन, दिल्ली मोतिहारी स्पेशल ट्रेन, दिल्ली सीतामढ़ी और गांधीधाम भागलपुर स्पेशल ट्रेन समेत 16 स्पेशल ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। इसके अलावा कटिहार दिल्ली एक्सप्रेस और गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस समेत 13 रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इधर रेलवे ने दानापुर मंडल के नवादा और बारसलीगंज स्टेशनों के बीच स्थित बाघी बरडीहा स्टेशन पर जमालपुर गया मेमू ट्रेन को 25 मई से 1 मिनट का ठहराव देने का निर्णय लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव चाय के टिकाऊ उत्पादन, उपभोग और व्यापार को बढ़ावा देता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। चाय का उत्पादन और प्रसंस्करण लाखों परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। चाय की उत्पत्ति 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी यह 1,30,00,000 से अधिक लोगों का भरण पोषण करती है। मधुबनी जिले में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानव तस्करी, मादक पदार्थों के सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, अतिक्रमण और जाली नोटों पर अंकुश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में स्थानीय जिलाधिकारी आनंद शर्मा और नेपाल के सिरहा जिला के CDO सुरेंद्र पोडेल समेत दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। सारण जिले के छपरा में जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने पर जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत 106 पंचायत सचिवों पर 1000 रूपये का अर्थदंड लगाया है। इस राशि की कटौती पंचायत सचिवों के वेतन से की जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग में सीतामढ़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर से दिसंबर 2025 की डेल्टा रैंकिंग में जिले ने कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। औरंगाबाद जिले में ऋषियप थाना क्षेत्र के पहरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मौके से सिलेंडरों के अलावा 90 गैस पासबुक, उज्ज्वला गैस चूल्हा तथा अन्य उपकरण बरामद किए गए। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के नौबतपुर में CDPO कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार को 37,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संतोष कुमार आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली के तहत यह राशि ले रहा था। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है तकनीकी संस्थानों में युवा पेशेवरों की नियुक्ति होगी। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। दैनिक भास्कर लिखता है UPSC 2027 सिविल सेवा प्रीलिम्स 23 मई को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 6ठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।